Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
किसी ने इंग्लिश में प्रश्न किया है, व्हाट इज द क्लियर मीनिंग ऑफ पीस इन डायनामिज्म।
ये पीस यानी शांति और डायनामिज्म यानी क्रियाशीलता, किसी कार्य में तत्परता, पुरुषार्थ में प्रवीणता, ये कोई परस्पर विरोधी गुण नहीं है बल्कि सहायक। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति शांत हो वो क्रियाशील नहीं होता, बल्कि वो क्रिएटिव वर्क करता है, वो ऐसा कार्य करता है जिससे भला हो संसार का। और जो पीसलेस होकर कार्य करता है, कार्य वो भी करता है लेकिन उस कार्य से रिजल्ट क्या होता है। मान लीजिए किसी ने गुस्से में आकर अपने शांति को गंवाकर एटम बम बना डाला, उसका रिजल्ट क्या होगा। जो पीसफुल व्यक्ति होगा वो एटॉमिक एनर्जी को, उस पावर को अपने वश में करके उससे लाइट पैदा करेगा, उससे कारखाने चलाएगा, उस एनर्जी से, ऊर्जा से अच्छे काम करने की कोशिश करें। इसलिए उसको कहते हैं पीसफुल यूजेज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। और जो दूसरा किस्म का कार्य करता है, डायनेमिज्म उसमें भी है, क्रियाशीलता उसमें भी है, काम वो भी करता है लेकिन वो काम क्या करता है, दुनिया को ही तबाह करने का काम करता है। तो पीस और जो क्रिएटिविटी है, जो काम करने की रचनात्मक प्रवृत्ति है, बल्कि ये अगर पीस और ये रचनात्मक प्रवृत्ति इकट्ठे नहीं होंगे तो एक अच्छे विश्व का निर्माण नहीं होगा, बल्कि जो निर्माण होगा वो अंतोगत्वा विध्वंस करने वाला होगा। वो जो काम करेगा उसका नुकसान होगा, नतीजा उसका खराब होगा। आप कोई मिसाल दे दीजिए कि कोई चीज किसी ने बनाई लेकिन पीसलेसनेस होकर बनाई, पीसलेस होकर, तो उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर उसका कोई बाई प्रोडक्ट किसी ने अच्छे काम में यूज कर लिया तो वो पीसफुल व्यक्ति ने किया होगा। जो पीसलेस व्यक्ति था उसने तो एम ही ये रखा कि इसे नुकसान कैसे हो। अब वही स्टील है या वही लोहा है, लोहे से एक पीसलेस व्यक्ति तलवार बनाएगा और लोहे से एक पीसफुल व्यक्ति जो है एक बाल्टी बनाएगा या कोई ऐसी चीज बनाएगा जो अच्छे काम में इस्तेमाल की जा सके। चीज वही होती है लेकिन उसके इस्तेमाल करने के तरीके मनुष्य के मनसा पर डिपेंड करते हैं, आधारित होते हैं कि ये व्यक्ति शांत है तो उसकी जो रचना होगी वो भी शांति पहुंचाने वाली, अगर वो अशांत है तो उसकी रचना भी अशांत करे। लेकिन क्रिएटिविटी और एक्टिविटी इज लाइफ, पीस इज ऑल्सो लाइफ। कोई जो डेड चीज है वो तो पीसलेस या पीस अनुभव ही नहीं कर सकती, अनुभव होता ही चेतन को है, जो लाइफ वाला व्यक्ति हो तो उसके बिना नहीं हो सकता, और लाइफ के बिना तो आदमी क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकता। तो ये बल्कि पीसलेसनेस जो है वो हमारी क्रिएटिविटी और लाइफ को इफेक्ट करती है। उदाहरण के तौर से क्रोध है, सबसे पहले तो क्रोध का इफेक्ट मनुष्य पर देख लीजिए, उसके नर्वस सिस्टम पर क्या पड़ता है। योग में कोई व्यक्ति बैठा है, डॉक्टर के पास ईईजी और ईसीजी है, वो किसी के हृदय की गति को देख ले, उसके मस्तिष्क से जो वेव्स निकल रहे हैं, ब्रेन वेव्स जिसको कहते हैं, उसको माप ले, उसके जो टोन है मसल का उसको माप ले, उसके जो और पैरामीटर से अगर उसके शरीर का परीक्षण कर ले, तो जो व्यक्ति शांत होकर कर्म कर रहा है सबसे पहला यह है कि उसका स्वास्थ्य बना रहेगा, उसका शरीर ठीक रहेगा और उसका मस्तिष्क जो है वो संतुलित होकर कार्य करेगा। और जो पीसलेस होकर कार्य कर रहा है तो उसको ही देख लीजिए कि उसका अपना ब्लड प्रेशर अप होगा, हार्ट बीट ज्यादा होगी, उसका बाकी भी जो सारा शरीर है वो झकझोरा जा रहा होगा। तो पीसलेस वाला भी एक्टिविटी तो कर सकता है, हाइपर एक्टिविटी भी कर सकता है, सारी एनर्जी को एक बहा सकता है किसी काम के लिए लगा सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट उसके अपने लिए और संसार के लिए खराब। लास्ट क्वेश्चन,
एक दो क्वेश्चन। समय काफी दौड़ता जा रहा है कई भाई बहनों, वैसे तो काफी आपके प्रश्न हैं जिनका समाधान कल के विषयों में आ जाएगा। अभी हम एक ही प्रश्न लेंगे, विशेष करके जैसे आज दादी जी ने सबको मांस मदिरा अंडा आदि त्यागने के लिए प्रेरणा दी, उन आप सबसे प्रतिज्ञा भी करवाई, तो किसी का प्रश्न है कि ठीक है मैं तो नॉनवेज नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर मेरे घर के मेंबर्स नॉनवेज हैं तो क्या मैं नॉनवेज चीज को हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ क्या? और दूसरा किसका है कि शरीर का एक प्रश्न है कि दादी जी ने ये सब छोड़ने की बातें कही, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह अंडा या मांस जानवर के शरीर का एक हिस्सा है, निसंदेह जानवर के शरीर से निकलने वाला दूध भी उसी शरीर का एक हिस्सा है और वो जानवर के बच्चों के लिए, बच्चे के लिए है, न कि हमारे शरीर के लिए। तो कृपया इस पर प्रकाश डालें।
जानवर के जो दूध की बात कही गई है कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक विचारणीय है, चर्चनीय है। और उसकी दूसरी, उसका उत्तर है क्या है कि जानवर का जो दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, वो उसके बच्चों के लिए होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उस समय को ख्याल में रखिए जब लोग पशुओं की इतनी सेवा करके उनको भरपूर खिलाते थे, जो एक पालतू जानवर को जिस ढंग से वो पालते थे, गाय को माँ कहकर कि हमारी माता है, माता का दूध जैसे लिया जाता है, इस प्रकार से, ये नहीं कि उसका हक छीन कर बच्चे का, बच्चे को अपना पूरा हिस्सा देकर, और गाय इतना दूध दे कि बच्चे की जरूरत से भी ज्यादा दे, और गाय को कमजोरी ना आए, उसको गाय की कई किस्म की चीजें खिलाते थे और उसे इतना प्यार और सम्मान करते थे। ये तो भारत के लिए मशहूर है, विदेश वाले लोग हंसते हैं कि भारत के लोग देखो जी गाय को माँ कहते हैं, गौ माता। अब गौ माता क्यों कहते हैं? जैसे छोटे बच्चे को माँ दूध देती है और उसकी पालना करती है, बचपन से उसके शरीर में वो गया होता है, उसी से जीवन भर उसकी जो हड्डियां बनी, जो उसका मांस बना, जो उसका शरीर बढ़ा, तो उसकी शक्ति उसमें आई। माँ का ऋण कभी भूल नहीं सकता वो जिसने माँ का दूध पिया है। और क्या कहते हैं लोग, तो अरे तू माँ के दूध को भी धिक्कारता है, तू माँ से ऐसे बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे? कोई माँ का एहसान कितना होता है मनुष्य के ऊपर, इसके ऊपर कई कहावतें हैं और स्टोरीज बनी हुई है। निस्संदेह वो कहते हैं जननी जन्म भूमि स्वर्गात अभी करियसी, कि जो माँ है और जन्म भूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो माँ का ऋण कोई कम नहीं होता। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, बादशाह बन जाए और कुछ क्या भी बन जाए, माँ फिर भी माँ है। वो कहते हैं जब अकबर घर में आता था तो उसको माँ कहती थी अकबरू तू आ गया, और वो कहती माँ तू मुझे आने से पहले बादशाह सलामत जहां परवर अन्नदाता इत्यादि इत्यादि। बादशाह अकबर आते हैं, मेरा अनाउंस करते हैं और मैं घर में आता हूँ, तुम मेरे को कम से कम अकबर नाम तो पूरा कह दिया कर। और तू कहती है कि अकबरू आ गया, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, माँ कम से कम ये तो मेरा कुछ तो ख्याल कर, मैं भी आकर बड़ा हूं। वो कहते हैं इस दुनिया के तीन नाम परसु परसा परसाराम। छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं परसु इधर आजा, माँ कहती है। थोड़ा बड़ा होता है तो लोग उसको कहने लगते हैं परसु मत कहा कर, इसकी सगाई होने वाली है तो इसका नाम परसा तो कम से कम बुला, परसा इधर आजा। और जब बड़ा होता है तो परसाराम उसको बोलते हैं, बच्चे वाला हो जाता है तो लाला परसाराम बोलते हैं। फर्क पड़ता है, उतना फर्क तो घर में भी पड़ जाता है। और ये बादशाह जहान परवर अकबर साहब हैं और इनको तू अकबरू कहती है, ये तो ठीक नहीं। तो उसने कहा मैं तो तुझे अकबरू कहूंगी, तू मेरा तो वही छोटा लाल है, मैं तो तुझे उसी तरह से देखती हूँ। तो क्या बोलता है, कहता है माँ मुझे सबसे प्यारा नाम यही लगता है, मैं तो तुझे लाड से कह रहा हूँ, तू मुझे इसी नाम से बुलाया कर, दुनिया ने तो मुझे बोर कर दिया है, ये आते हैं वो अपनी तरह से जो कहते हैं उनको कहने दे, घर में आकर मेरी जो सारी थकावट दूर होती है तब होती है जब तू मुझे अकबरू कह के बुलाती, ये मेरा प्यारा नाम है, मेरे बचपन के वो भोले दिन याद मुझे आ जाते। तो माँ का तो ये है। तो गऊ को माता कहते लोग, उसको कितना तो प्यार करते हैं। हम लोगों ने खुद बचपन में हमारे घर में गऊएं थी, हमने उनकी सेवा की है, उनको पाला है, और गऊ भी हमको कितना प्यार करती थी, पशु भी उसका रेस्पॉन्स देते हैं। आपके पास कोई पक्षी हो, आप उसको प्यार से पालिए, देखिए वो आपको क्या रेस्पॉन्स देता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, एक व्यक्ति के पास ठहरा हुआ था, वो योग का एक आश्रम का इंचार्ज था। तो जब हम कभी आते थे लोगों को योग वगैरह सिखाकर, विदेशी ऑस्ट्रेलियन ही था वो, तो उसने एक तोता पाल रखा था, उसको कुछ सिखा भी रखा था, तो तोता उसका वो भी उसके गुण गाता था। जब हम वहां लौटते दरवाजा खुला और वो कहेगा
डेविड यू हैव कम,
डेविड तुम आ गए, उसको बोलता है अंग्रेजी भाषा में डेविड यू हैव कम। हाँ जी, और दो चार उसने सेंटेंसेस ऐसे याद कर रखे थे बड़े प्यार से, ऐसे ऐसे ऐसे, वो अंगुली करेगा उसको ठुंगा मारेगा, प्यार करते। आप किसी को भी देख लीजिए, अगर आप प्यार करेंगे तो आप फिर प्यार का रेस्पॉन्स करते हैं, पशु भी ऐसे करते हैं। अभी तक दो कास्ट हैं, सब कास्ट हैं, एक सपेरे सपरे और एक नागपाल, ये पंजाब की दो सब कास्ट हैं, सपरा और नागपाल। हमारे भी क्लास फेलोज कुछ सपरा और नागपाल हुआ करते थे और वो सांप और नाग की पूजा किया करते थे। अरे हम कहते भाई तुम दूध पिलाते हो सांप को, वो कहते हैं दुग्धपानम भुजंगानाम विश्वर्धनम, कि सांप को तुम दूध पिलाते हो उसकी जहर बढ़ाते हो और तुम क्या काम करते हो, उससे मजाक किया करते। तो वो ये कहते हैं कि जो सपरे और नागपाल होते हैं उसको सांप काटता नहीं कभी। आज तक हमारे खानदान में ये रिवायत है, कभी किसी ने सांप ने किसी को काटा नहीं। हम कहते थे तो सांप को कहां से पता लगा तुम्हारी सब कास्ट क्या है, तुम नागपाल हो या, हमें नहीं पता था जब तक तुमने बताया नहीं। तो सांप बेचारा बिल में छिपा हुआ वो निकला, वो ये सोचेगा कि ये नागपाल का घर है, इनके बच्चों को हमने नहीं काटना, ये क्या बात करते हो तुम। कहता था ठीक है कभी सांप आए तो बेशक मेरे को ले चलो, मजा ले काटे, हमें डर ही नहीं। तो क्या है कि उनके मन में एक फेथ है भाई हमें सांप काटेगा नहीं, और सांप को भी वो फेथ पहुंचता है। देखिए मन को मन से राह होती है, दिल को दिल से राह होती है। तो गवों की इतनी सेवा लोग करते थे, और वो जैसे उसके बछड़ी बछड़ा होते थे गाय के, घर के मेंबर भी उसके बच्चे होते थे, जैसे उनका हक है उनका भी हक है, ऐसे वो समझते, और वो उनकी सेवा करते थे। इट वॉज ए म्यूचुअल काइंड ऑफ एग्रीमेंट, नॉट रिटन बाई ए लायर, किसी वकील का लिखा हुआ एग्रीमेंट नहीं था, ये गाय और घर के आदमियों में खुद ब खुद था। अब देखिए घर में बिल्ली भी रहती है, कुत्ता भी रहता है, वैसे बिल्ली और कुत्ते कितने दुश्मन है एक दूसरे के, देख लेगा बिल्ली को कुत्ता भागेगा उसके पीछे बड़े जोर से। और जब घर में रहते हैं एक ही कटोरी में दूध पीते देखा है, शेर का भी कभी कभी फोटो अखबार में आ जाता है, किसी ने पाला हुआ उसके बच्चे को, तो कैसे एक तरफ वो पक्षी पशु सब घर में बैठे हैं। हमारे यहाँ तो दिखाते हैं कि शंकर जी पार्वती और ये सारा दैवी परिवार बैठा है, किसी का मोर है तो किसी का गरुड़ है तो किसी का सांप है, जो परस्पर विरोधी जानवर हैं वो सारे फैमिली में इकट्ठे ही बैठे हुए, वो भी अपने आराम से बैठे हुए, ये इस तरह से होता है। तो वो उनका हक जरूर है। आज जो इंसान है गाय को खाना तो देता नहीं पूरा है जी, उसको लूटता कसूटता है, कोई इंजेक्शन लगा के कुछ करके। तो कोई उनसे कहते थे महात्मा जी आप तो गरीबों की सेवा करना चाहते हो, बकरी को तो बहुत मेवा खिलाते हो। वो कहते बकरी भी तो हमको दूध पिलाती है, तुम दूध पिलाओ तो तुमको भी खिलाएंगे। ये तो भाई एक इस हाथ दे उस हाथ ले, सौदा नकद बनकद, ये तो वो हिसाब है। तो क्या है कि हमारा हक बनता भी है, हमारा हक नहीं भी बनता है, ये डिपेंड करता है हमारे व्यवहार के ऊपर, इसको आपको समझना चाहिए। और दूसरी जहां तक मांस की बात है, जान से ही मार डालना किसी को, अरे भाई किसी का जिंदा रहने का हक है या नहीं? इंसान के बच्चे को कोई मारता है तो आप क्या सोचते हो? और हैवान के बच्चे को, जबकि दुनिया में हजारों लाखों पदार्थ हैं खाने को, हलवाई की दुकान पर कितने प्रकार के वो बने हुए हैं, सब्जियां कितने प्रकार की मिलती हैं, फल कितने प्रकार के मिलते हैं, मेवे कितने प्रकार के मिलते हैं, उनको बना बना के एक ही बेसन की कितनी चीजें बनती हैं खाने को, कोई कमी है? उनको ना खाकर किसी के गले पर छुरी मार के उसको खून बहा के उसका खाते हो, पेट है कि कब्रिस्तान है? मुर्दे डालते हो उसमें, ये पेट समझा हुआ है या आपने कब्र समझी हुई है, क्या है? कितने दफना रखे हैं अब तक, कितने खा रखे? वो बोलते हैं सब कुकड़ों को करते हैं अंदर, एक ना एक नतीजा दिन निकलता है आदमी का। तो ये गलत काम करता है मनुष्य, जिसको आज ये काम आ जाता है पशु को मार के खाने का, कल वो इंसान को भी मार डालता है। और जिसकी बुद्धि ऐसी है कि किसी को दुख नहीं देना, वो किसी को कैसे खाएगा? कल तक, अभी देखिए ईद आती है भाई, बकर ईद है ये, अब आज तक वो बकरी घर में पाली जाती है, नहीं घर का मेंबर बन गया वो, और आज आप उसको कुर्बान करने जा रहे हो, बकरी को काट के खा रहे हो। अपना अपना इरादा है, विचार है, हर एक को अपना विचार सही लगता है, उनको सही लगता होगा। हम उस ख्याल से किसी से नफरत से किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन हम एक अपना विचार जरूर बताते हैं कि हर एक को जीने का अधिकार, जियो और जीने दो। और जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये शरीर को हानिकारक हैं, ये अंडा हो या मीट हो, इसका तो लंबी डिटेल है। आप कभी चाहें, हमारे शरीर की बनावट ही ऐसी है कि हम मीट खा ही नहीं सकते। देखिए, जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, जो वेजिटेरियन जो जानवर हैं, जो अनाज खाने वाले या सब्जी खाने वाले जानवर हैं, जैसे गाय है, बकरी है, इंसान की अंतड़ियां उसी तरह की हैं, लॉन्ग इंटेस्टाइन है, वो लंबी हैं। जो शेर है, कुत्ता है, जो इस प्रकार के मांस खाने वाले जानवर हैं, उनकी इंटेस्टाइन छोटी हैं, उसमें वो सड़ता नहीं है। हमारे यहाँ जो मीट, जो अगर मीट खा लेता है इंसान, वो प्यूट्रीफाई होता है, वो ठीक नहीं रहता है शरीर के लिए, उसकी बात है। हमारे जबान देख लीजिए, जो जानवर मांस खाने वाले हैं, कुत्ता है या शेर है या जो कोई भी है, वो पानी को पीते नहीं है, सक करते हैं, लिक करते हैं। उनके सामने, कुत्ते के सामने पानी रखो, जबान बाहर निकाल के उसको लेता है। और जो दूसरे हैं, गाय है या वो है, वो आप देखेंगे पीते हैं। वो उनके बनावट ही शरीर की अलग है। हमारे दांत अलग तरह के हैं, उनके दांत अलग तरह के। हमारे दांत कुछ ऐसे हैं जिनको कैनन टीथ कहते हैं, सारे नहीं, जो काटने वाले हैं, जिससे हम चना काटते हैं, मूंगफली खाते हैं और ये काजू खाते हैं, जब किसी चीज को आप कुतर कुतर करते हैं, तो वो दांत हमारे पास थोड़े हैं, मेवा खाने के लिए मैंने बताया आपको, खाओ बेशक, कोई मना नहीं। उनके जो सारे दांत हैं वो ज्यादा हैं ही कैनन टीथ, क्योंकि उन्होंने मीट को कुतर कुतर करना है। उनकी बनावट अलग है, हमारी बनावट अलग है। क्या हम मांसखोरा इंसान है, यानी जानवर हैं? तो ये एक अलग डिटेल है, एक अलग सब्जेक्ट है, उसको मैं डिटेल में नहीं ले रहा। वो डॉक्टर्स ने पहले कई लाते थे, लगाते थे हिसाब कि जी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पशु बढ़ जाएंगे और इतना अनाज खा जाएंगे, ये है वगैरह, सब लोगों ने हिसाब लगाया है कि अगर वो जानवरों को जितना अनाज खिलाया जाता है और अगर वही इंसानों को खिलाया जाए, इसकी जरूरत भी नहीं, वट एवर इट इज। वो तो लंबी डिटेल हम अभी नहीं ले रहे। कहने का भाव ये है, आप तो योगी हो, सोचो ही नहीं, नेवर थिंक ऑफ बैड थिंग, इट वॉज ए ड्रीम, लेट पास्ट बी पास्ट, उसको भूल के अब हमें क्या खाना है, ये हमारा मुख है, मुख से हम हंस हैं, हमको क्या खाना है, मुख में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, पेट में क्या डालना है, हाथ किसकी चीज को लगाना है, ये आप सोच, इट इज अप टू यू। हम तो आपको एक अच्छा विचार आपके सामने रखते हैं, आप मर्जी के मालिक हैं, अपना सोच खुद कर सकते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, ये कोई बंधन तो है नहीं। अच्छी चीज बताते हैं हम आपको, जिसको स्वीकार हो उसको करो, जिसको ना स्वीकार हो, इट इज अप टू। ओम शांति।